आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार महाकाल अर्थात मुक्तिधाम, जहाँ निर्विशेषवादी जो भगवान को निराकर मानते हैं, ये लोग उसी धाम को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो ज्योतिर्मय धाम जहाँ वो विलीन होना चाहते हैं। तो उस महाकालपुर में गोप कुमार की भेंट शिवजी और उनके अनुचर वर्गों के साथ हुई थी, और शिवजी के संबंध में कुछ सूचना प्राप्त होने के पश्चात नंदीश्वर से उसी समय गोप कुमार ने देखा कि कुछ चतुर्भुजधारी वैकुंठवासी चतुर कुमार के साथ वहां उपस्थित हुए हैं, तो उनके संबंध में जानने के लिए गोप कुमार के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। और गणेश जी ने उनके संबंध में थोड़ा बहुत कुछ बताया था गोप कुमार को, और ये भी बताया था कि ये किस प्रकार वैकुंठ लोक से ये लोग आए हुए हैं, भगवान विष्णु के अनुचर हैं, पार्षद हैं, और उनके साथ जो चतुकुमार हैं जो कि तपलोक में रहते हैं, ये चतुकुमार भी वैकुंठ गए हुए थे, और वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के उपरांत इन वैकुंठवासियों के साथ वे भी आए हुए हैं, किंतु अभी तक इन वैकुंठवासियों का वहां मुक्ति धाम में महाकालपुर में आने का क्या कारण था ये गणेश जी ने नहीं बताया है, या उन वैकुंठवासियों ने भी नहीं बताया है। केवल गणेश जी ने यही कहा है कि यदि आप वैकुंठ के संबंध में अधिक जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिताजी अर्थात शिवजी से आप वैकुंठ के बारे में और अधिक श्रवण कर सकते हैं। अब गोप कुमार जो कि वैकुंठ के संबंध में गणेश जी से वो वर्णना सुनकर और वैकुंठवासियों को अपनी आंखों के सामने देखकर उनके सुंदर रूप, आकर्षक शरीर और उनकी वेशभूषा, ये सब देखकर वो बहुत आकृष्ट हो गए थे वैकुंठवासियों के साथ। किंतु गोप कुमार मन ही मन सोच रहे थे कि मैं उस वैकुंठ में जाने के लिए योग्य नहीं हूं, उस वैकुंठ को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, यह सोचकर बहुत दुखी हो गए थे गोप कुमार, और दुख में म्रियमाण होकर वो मूर्छित हो गए थे, नीचे गिर पड़े थे। तो उसी समय शिवजी जो वहां पर उपस्थित थे और जो परम दयालु हैं और दूसरों के दुखों को देख नहीं सकते, उन्होंने गोप कुमार पर कृपा प्रदर्शित की। वो तुरंत गोप कुमार को नीचे से उठा लिया और उनका आलिंगन किया उनको आश्वस्त करने के लिए। अब शिवजी समझ गए थे कि गोप कुमार क्या सोचकर इस प्रकार मूर्छित हो गए थे, क्योंकि शिव जी समझ चुके थे कि ये गोप कुमार वैकुंठ का वर्णन सुनकर गणेश जी के मुख से ये वैकुंठ जाने के लिए ललायित है, और यह स्वाभाविक है कि वैकुंठ का कोई वर्णन श्रवण करेगा और वहां जाने के लिए इच्छा नहीं करेगा वो तो निश्चित रूप से कोई भौतिकवादी ही होगा जिसकी गति नरक गति होती है। किंतु गोप कुमार उस वैकुंठ में जाने के लिए बहुत व्यग्र थे वैकुंठ का वर्णन सुनकर, और थोड़ा बहुत ही उन्होंने श्रवण किया है और वैकुंठवासियों को देखा। अब शिवजी ने गोप कुमार से कहा कि हे श्री वैष्णव, पार्वत्या सह अहं अपि कामये, कि हे वैष्णव, हे भगवान विष्णु के भक्त, मदन गोपाल के भक्त, आप जिस प्रकार की कामना करते हैं वैकुंठ जाने की कामना, ये कामना हमारी भी है, हम भी चाहते हैं वैकुंठ जाने के लिए। शिव जी कह रहे हैं, और केवल हम स्वयं नहीं पार्वती भी हमारे साथ जाना चाहती है वैकुंठ। इसका अर्थ है कि हम दोनों वैकुंठ जाने के लिए ललायित, आप जैसे वैकुंठ जाने के लिए व्यग्र हो रहे हैं, हम भी उस प्रकार वैकुंठ जाने के लिए व्यग्र हैं। तस्मिन् वैकुंठ लोके तु सदा वासं भवान्नेव, और वैकुंठ में जाकर हम क्या करना चाहते हैं, ये नहीं है कि वैकुंठ में जाएं और भगवान विष्णु का दर्शन करके पुनः अपने लोक में लौट आए। तो शिव जी कहते हैं कि हमारी जो इच्छा है पार्वती और हमारी जो इच्छा है वैकुंठ जाने के लिए, आप जैसा, तो हमारी इच्छा है कि हम वैकुंठ में जाएं और सदा के लिए वहीं निवास करें वैकुंठ में, वहां से लौट कर अपने लोक में नहीं आए। यद्यपि शिव जी का लोक जो है वो नित्य है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, और शिव जी का लोक जो है ये महाकालपुर जो मुक्ति धाम है उसके ऊपर शिव जी का लोक, शिवलोक, और शिवलोक के ऊपर वैकुंठ लोक। तो यद्यपि शिव जी कभी नष्ट नहीं होते हैं या उनका लोक कभी नष्ट नहीं होता है, फिर भी शिव जी वैकुंठ लोक में जाकर निवास करना चाहते हैं पार्वती के साथ। क्यों? क्योंकि वैकुंठ लोक में स्वयं भगवान नारायण विष्णु स्वयं निवास करते हैं, शिव लोक में शिवजी यद्यपि भगवान विष्णु के या शंकर स्वयं के विस्तार रूप अनंत शेष उनकी पूजा करते हैं, फिर भी वैकुंठ लोक में भगवान के साथ रहना, उनकी सेवा करना शिवजी यही चाहते थे। अपने लोक में जब भगवान की पूजा करते थे शिव जी, तो अपने गणों के साथ भगवान का नाम संकीर्तन करते थे और नृत्य आदि करते थे, किंतु वैकुंठ लोक में जाकर अब शिव जी निवास करना चाहते थे, ये उन्होंने बता दिया गोप कुमार को, क्योंकि गोप कुमार भी वैकुंठ जाने के लिए ललायित थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि सदा वासं भवान, आपकी जैसी इच्छा है कि आप वैकुंठ लोक में सदा नित्य निवास करना चाहते हैं, हम दोनों भी वही चाहते हैं वैकुंठ लोक में जाकर निवास करने के लिए। स अतीव दुर्लभ लोक प्रार्थिव मुक्तिरपि ध्रुवम्। तो शिव जी कहते हैं यद्यपि यह हमारी इच्छा, वैकुंठ लोक में जाने की इच्छा, या आपकी भी इच्छा है वैकुंठ लोक जाने के लिए, किंतु ये वैकुंठ लोक अतीव दुर्लभ है। इस वैकुंठ लोक को प्राप्त करना ये दुर्लभ है, हर कोई व्यक्ति वैकुंठ लोक को जा नहीं सकता। इसका अर्थ है कि थोड़े व्यक्ति जो भक्ति का अभ्यास करते हैं वही जा सकते हैं। वो कौन जा सकता है अब शिव जी बताएंगे, वैकुंठ लोक में कौन जाने के लिए योग्य है। तो कहते हैं कि अतीव दुर्लभ लोक प्रार्थिव मुक्तिरपि सदा मुक्तिरपि ध्रुवम्। यह सत्य है कि यह वैकुंठ लोक को प्राप्त करना दुर्लभ है, अर्थात सहज लभ्य नहीं है। वैकुंठ को प्राप्त करना आसानी से कोई वैकुंठ लोक को प्राप्त नहीं कर सकता। यहां तक कि जो मुक्ति कामी है, जो मुक्ति चाहते हैं, ये मुक्ति कामी लोग भी वैकुंठ लोक की प्रार्थना करते हैं। वैकुंठ लोक जाने के लिए ये भी चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति पद में वहां जो आनंद है वो आनंद अति तुच्छ आनंद है। ऐसा बताया गया है कि ब्रह्म लोक या ब्रह्म ज्योति, जिसमें ये लोग लीन होना चाहते हैं जो मुक्ति कामी है, क्योंकि भगवान को निराकार मानते हैं, इसलिए बहुत कठिन परिश्रम करके ये लोग मुक्ति को प्राप्त होते हैं। आरुह्य कुत्सेण परम पदं तत, कुछ साधना करके ये परम पद वो ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए। तो ये ब्रह्म पद जो है ये भगवान की अंग ज्योति है, उनके शरीर से जो ज्योति निकलती है वही ज्योति है ये ब्रह्म पद। और उस ब्रह्म पद को प्राप्त करना है बहुत आनंदमय है, उस गति को जो प्राप्त करता है बहुत आनंद प्राप्त करता है, वहां कोई संसार का दुख नहीं है। और जो लोग संसार के दुखों से अत्यंत दुखी हैं, कष्ट को प्राप्त हुए हैं, और उनका हृदय संसार के कष्ट से सूख गया है, कोई रस नहीं है, संसार में लोग आते हैं सुख भोग करने के लिए, सुख का रस आस्वादन करने के लिए, किंतु संसार में इतने तरह के दुख हैं कि वो जो आनंद की जो कामना है वो भी नष्ट हो जाती है। व्यक्ति चाहता है कि कैसे इस दुख से मुक्ति को प्राप्त करे, इसलिए उसका हृदय जो है वो शुष्क हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चाहता है कैसे मुक्ति को प्राप्त हो जाए, भगवान में लीन हो जाए तो कोई दुख नहीं रहे। फिर भी ये लोग जब मुक्ति पद को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म ज्योति को, वहां भी आनंद प्राप्त करते हैं, कोई संसार का दुख वहां नहीं है, किंतु उनका वो आनंद अधिक समय तक नहीं रहता, क्योंकि आनंद जब व्यक्ति तरह तरह का कार्य करता है उसमें आनंद प्राप्त करता है, किंतु ब्रह्मलोक में कोई कार्य नहीं है, तो वहां पर वो लीन रहते हैं ब्रह्म ज्योति में, तो वहां जो भी थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट नहीं हो पाते। इसलिए कहा गया है कि आरुह्य कृत्स्नेन परम पदंतत पतंति अध अनादृत दुष्मद अंग्रह, क्योंकि उन लोगों ने भगवान के चरण कमल की अवमानना की है, भगवान के चरण कमल को अंगीकार नहीं किया है, क्योंकि वो भगवान का रूप ही मानते नहीं। इसलिए भगवान के चरण कमल की सेवा करने की इच्छा उनमें नहीं, उन्होंने अनादर किया है भगवान के चरण कमल का, जिसके कारण वो ब्रह्मपद को प्राप्त होकर भी वो नीचे गिर जाते हैं। पतंति अधर अनादृता दुष्मत अंग्रह। और ये बताया गया है कि ब्रह्मपद में जो सुख आनंद है वो आनंद अति तुच्छ आनंद है। भगवान के लोक वैकुंठ लोक में जो आनंद भक्त लोग प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान की सेवा में। तो वैकुंठ लोक में सेवानंद है और मुक्ति लोक में ब्रह्मानंद है। तो इसमें जो तुलना की गई है तो तुलना इस प्रकार की गई है कि ब्रह्मानंद का यदि सागर है एक तरफ और इधर सेवानंद की एक बूंद जल, तो एक बूंद के साथ ब्रह्मानंद का सागर तुलनीय नहीं। भक्तगण वैकुंठ लोक में भगवान की सेवा में जो आनंद को प्राप्त करते हैं वो आनंद सर्वश्रेष्ठ आनंद है, क्योंकि वहां विविधता, भगवान की तरह तरह की सेवाएं भक्त लोग करते हैं। कोई भगवान के लिए फूल की माला गुंथता है, कोई भगवान के लिए भोजन प्रस्तुत करता है, कोई भगवान के लिए मंदिर में झाड़ू लगाता है, तरह तरह की सेवाएं, और भक्त लोग तरह तरह की सेवाओं में आनंद को प्राप्त होते हैं। किंतु मुक्ति धाम में ब्रह्मलोक में वहां कुछ नहीं, कोई सेवा नहीं, तो वहां एक रस्ता है, विविधता नहीं है, और वैकुंठ में विविधता है। इसलिए जो विविधता जहां पर है वहां आनंद अधिक होता है। तो शिवजी कहते हैं साध्यो ब्रह्म सुतानां हि ब्रह्मणस्त ममापि सह। तो इसलिए मुक्तिकामी लोग भी मुक्तेर अपि, तो मुक्तिकामी लोग भी प्रार्थ्य, वो भी कामना करते हैं वैकुंठ लोक जाने के लिए। यदि उनको ये सूचना प्राप्त हो कि भगवान का रूप है, उनका धाम है जहां वो जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं, किंतु उनको सूचना प्राप्त नहीं। यदि किसी को सौभाग्यवश ऐसी भगवान के बारे में सूचना प्राप्त हो जाती है तो वो प्रार्थना करता है वैकुंठ लोक जाने की। और ऐसा देखा गया है कि जो निराकारवादी होते हैं, जिनको हम मायावादी भी कहते हैं, ये अज्ञतावश मुक्ति की कामना करते हैं, उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, यद्यपि वो अपने को ज्ञानी मानते हैं, किंतु वस्तुतः कोई मायावादी या निराकारवादी यदि श्रीमद् भागवत के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो वह अवश्य भगवान के धाम को प्राप्त होना चाहेगा। और ऐसा देखा गया है कि कई मायावादी लोग, निराकारवादी लोग अपने मार्ग को त्याग करके भक्ति मार्ग में आए और वैकुंठ को प्राप्त होने की कामना उनमें की है। तो शिवजी कहते हैं मुक्ते अपि प्रार्थ्यो साध्य ब्रह्म सुतान। और ये जो वैकुंठ लोक हैं ये ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों का भी लक्ष्य है। ब्रह्मा जी भी वही चाहते हैं कि ब्रह्मा यद्यपि ब्रह्मलोक में रहते हैं सत्यलोक में, वहां भी तरह तरह के सुख उपलब्ध है, क्योंकि ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक है। फिर भी ब्रह्मा जी उस वैकुंठ लोक की प्रार्थना करते हैं, वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं भगवान के धाम में। और केवल ब्रह्मा जी नहीं, उनके पुत्रगण जैसे भृगु आदि ये भी वैकुंठ लोक को जाना चाहते हैं। और शिव जी कहते हैं केवल ब्रह्मा और उनके पुत्रगण नहीं, हम भी चाहते हैं वैकुंठ लोक जाने के लिए। तो वैकुंठ लोक हमारा लक्ष्य है, साध्य है। तो अब शिव जी कह रहे हैं कि यद्यपि ये लोग सब हम लोग कामना करते हैं, अभी तक हम वैकुंठ लोक को प्राप्त नहीं हुए हैं, वैकुंठ लोक हमारे लिए साध्य है, साधित नहीं, अर्थात हम उसको प्राप्त नहीं हुए हैं। क्यों प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वैकुंठ जाने के लिए योग्यता क्या है? कौन व्यक्ति वैकुंठ जा सकता है या वैकुंठ जाने के लिए योग्य हो सकता है? अब शिवजी उनकी योग्यता का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं निष्कामेषु, जिस व्यक्ति की कोई भौतिक कामना नहीं, भौतिक संसार में हमारी तरह तरह की भौतिक कामनाएं, भोग की कामनाएं, हम भोग करना चाहते हैं संसार को, और यही कारण है कि संसार को भोग करने की इच्छा से हम लोग आए हैं संसार। हम लोगों ने कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहा और स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहा है, इसलिए हमें भेजा गया इस भौतिक संसार में। इसलिए हमारी कामनाएं असीम कामना है, भोग की कामना है। तो और जब तक ये भोग की कामना रहेगी तब तक हम वैकुंठ लोक जा नहीं सकते। तो शिव जी कहते हैं निष्कामेषु, जो समस्त कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त है, कोई भी भौतिक कामना जिसकी नहीं है, भोग की कामना नहीं, एकमात्र कामना भगवान को आनंद प्रदान करने की कामना, संतुष्ट करने की कामना सेवा के द्वारा। तो निष्कामेषु विशुद्धेषु, और जिसकी कोई भौतिक कामना नहीं है तो वो विशुद्ध शुद्ध हो सकता है। हम शुद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे हृदय में तरह तरह की भोग की कामना है, और ये भोग की कामनाएं हमें शुद्ध होने नहीं देती। और जब इन कामनाओं को हम त्याग देंगे कि हमारी कोई कामना नहीं है, एकमात्र कामना हम भगवान की सेवा कैसे करें और उनको आनंद प्रदान करें, तब हम शुद्ध हो सकते हैं। तो सिद्ध कहते हैं निष्कामेषु विशुद्धेषु, जो निष्काम है, जिसकी कोई भौतिक कामना नहीं है, जो शुद्ध हो चुका है, और स्वधर्मेषु ही यह कुमार, और जो अपने धर्म का पालन करता है निष्ठा पूर्वक, अपने धर्म का पालन करता है, स्वधर्म का पालन, जैसे शास्त्रों में वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, सभी के लिए उनका अपना अपना धर्म बताया गया है। तो जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन करता हो और निर्लिप्त रूप से धर्म का पालन करता हो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य होता है संसिद्धि हरितोषणम, भगवान हरि को संतुष्ट करना, ये वर्णाश्रम धर्म की सिद्धि है। या स्वधर्म पालन करने की सिद्धि भगवान को संतुष्ट करना, अपने धर्म पालन के द्वारा यदि व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर देता है तो वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो शिव जी कहते हैं स्वधर्म सुही यह कुमार परम निष्ठा गत तस्में या कृपा श्री हरेर भवत। तो इस प्रकार जो व्यक्ति की भौतिक कामनाएं नहीं है, जो विशुद्ध है और अपने स्वधर्म का पालन निर्लिप्त भाव से भगवान को संतुष्ट करने के लिए करता है निष्ठा पर भाव से, तो भगवान हरि उस व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान हरि को प्रसन्न करने का ये उपाय बता रहे हैं शिव जी। और जब भगवान हरि उस व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, वो व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त हो जाता है। तो पुनः कहते हैं तस्या सतगुणा चेत्सा ब्रह्मतम लवते सदा तदा। तो इस प्रकार जो भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर है, तो भगवान की उस कृपा का सतगुण उसको सौ में गुणिए, तो कृपा को सौ गुण कृपा अगर किसी को प्राप्त हो, उस कृपा के सौ गुण कृपा प्राप्त हो, वो ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। जैसे शास्त्र में भी बताया गया स्वधर्मनिष्ठ, जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति वो ब्रह्म पद को प्राप्त होता है सौ जन्म तक, सत जन्मनि। तो सौ जन्म तक कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन निष्ठापूर्वक करता है तो वह ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तो शिव जी यहां कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार भगवान की कृपा को प्राप्त हो जाता है और उस कृपा का सौ गुना जो प्राप्त होता है वो ब्रह्म पद को भी प्राप्त होता है, अर्थात सौ जन्म तक वो इस प्रकार कार्य करेगा तब जाकर सौ बार भगवान की कृपा प्राप्त होगा तो ब्रह्म पद को प्राप्त होगा, ब्रह्मा बनेगा। तो ये ब्रह्मा बदलते रहते हैं, कोई भी जीव ब्रह्मा बन सकता है, किंतु यदि वो इस प्रकार स्वधर्मनिष्ठ हो, विशुद्धात्मा हो और निष्काम हो, कोई भौतिक कामना ना हो, तो वो ब्रह्मा बन सकता है भगवान की कृपा से। तो पुनः कहते हैं तस्या सतगुणायं च सत्यं मद भाव मृच्छति। और यदि व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त हो गया, क्योंकि भगवान की सौगुण कृपा प्राप्त होने पर ब्रह्म पद को प्राप्त हो गया, और फिर उसका सौगुण सौगुना कृपा भगवान की यदि कोई व्यक्ति प्राप्त होता है तो वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, शिव जी का, वो शिव जी के समान भाव को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवतस्तस्य मयि यावान् अनुग्रह तस्मात् सतगुणोत्थाने जाते वैकुंठं लेतितम्। तो शिव जी कहते हैं अब व्यक्ति 1000 गुना कृपा भगवान का प्राप्त हो गया, सौ गुना से ब्रह्मा और सौ गुना से शिव। तो कहते हैं फिर उससे सौ गुना यदि वो कृपा प्राप्त करता भगवान, तब जाकर वो वैकुंठ को प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ वैकुंठ को प्राप्त होना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। तो श्रीमद् भगवतस्तस्य मई यावन अनुग्रह तस्मात सतो गुणोत्ताने जाते वैकुंठ एति तम। अथापि गोवर्धन गोपपुत्र स्तंग आहसितं मथुरेश भक्त। तो शिवजी तो गोप कुमार को इस सामान्य लोगों की बात कह रहे हैं, कैसे व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कहने पर हो सकता है कि गोप कुमार निराश हो जाएंगे कि ये तो हमारे द्वारा कभी होगा नहीं वैकुंठ को प्राप्त करना। तो इसलिए शिवजी आश्वस्त करते हैं गोप कुमार को, कहते हैं हे गोप कुमार, आप गोवर्धन गोप पुत्र, गोवर्धन के जो गोप हैं आप उसके पुत्र हैं, क्योंकि गोप कुमार गोवर्धन के थे, गोवर्धन के गोप बालक थे। तो कहते हैं तंग अहर्षि तंग मथुरेश भक्त कि आप इन वैकुंठ को जाने के लिए, भगवान का लोक वैकुंठ जाने के लिए आप योग्य हैं, क्योंकि आप गोवर्धन के गोप बालक हैं। और केवल गोप बालक नहीं, इसके साथ साथ मथुरेश भक्त है, मथुरा के जो ईश हैं, स्वामी हैं, कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो आप श्री कृष्ण के भक्त हैं, मदन गोपाल के भक्त हैं, इसलिए आप वैकुंठ जाने के लिए योग्य हैं। आप इसमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई कृष्ण का भक्त बन जाता है तो आसानी से वैकुंठ प्राप्त हो सकता है। तदेक भक्ति प्रिय विप्रशिष्य स्तदीय तन मंत्र पर अनुरक्त। और गोप कुमार की और क्या योग्यता है वैकुंठ जाने के लिए सिद्ध कर रहे हैं। एक तो आप गोवर्धन के गोप के पुत्र हैं, अर्थात ब्रजवासी हैं, और मथुरेश मथुरा के प्रभु भगवान कृष्ण के भक्त हैं। और केवल इतना नहीं, तदेक भक्ति प्रिय विप्र शिष्य, आप एक ब्राह्मण के शिष्य भी हैं। जो ब्राह्मण तदेक भक्ति प्रिय, जिस ब्राह्मण का भगवान कृष्ण की भक्ति एकमात्र भक्ति प्रिय है, तो ये गुरु की योग्यता भी बता रहे हैं। इसके साथ साथ शिव जी कहते हैं जो सदगुरु हैं उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, और पहली योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भगवान कृष्ण की, कृष्ण का एकनिष्ठ भक्त होना चाहिए। जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। जो कृष्ण तत्ववेता है, कृष्ण का तत्वता जानता है, वही गुरु होने योग्य। हम जिस किसी साधु या जिस किसी व्यक्ति से दीक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। दीक्षा ग्रहण करने के लिए हमें सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। और जो गुरु एकनिष्ठ कृष्ण भक्त हो, गुरु कभी अपने को कृष्ण नहीं बताता, अपने को कभी भगवान नहीं बताता। यदि कोई गुरु बनकर अपने को भगवान बता रहा है, इसका अर्थ है कि वो लोगों को धोखा दे रहा, ठग रहा। गुरु की योग्यता है कि वो भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में लोगों को कृष्ण की भक्ति में नियोजित करे, कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होने का उपाय प्रदर्शित करे, और स्वयं भगवान कृष्ण का भक्त हो, न कि स्वयं को भगवान घोषित करता, आजकल कलयुग में बहुत सारे ऐसे तथाकथित गुरु हैं जो अपने को भगवान घोषित करते हैं, इसलिए कलयुग के लोग विमोहित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, किसको ग्रहण करें, किसकी बात सत्य है, लोग जान नहीं पाते। इसलिए एकनिष्ठ कृष्ण भक्त होना ये गुरु की पहली योग्यता है। इसका अर्थ है कि गुरु की कोई भौतिक कामना नहीं होनी चाहिए, वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति आचरण करता हो, तब वही गुरु शिष्य को एकनिष्ठ भक्ति की शिक्षा भी दे सकता है। यदि गुरु में भौतिक कामनाएं हैं तो वह शिष्य को अपनी भौतिक कामनाओं को पूर्ण करने के लिए लगाएगा, वो कृष्ण के पास ले जाने के लिए मार्ग प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो इसलिए शिव जी कहते हैं तदेक भक्ति प्रिय अभिप्रशिष्य, कि आप एक ब्राह्मण के शिष्य हैं जो एकनिष्ठ कृष्ण का भक्त है, और उन्होंने जो मंत्र आपने आपको दिया है तदीय मंत्र तन मंत्र पर अनुरक्त, तो गुरु जो शिष्य को मंत्र प्रदान करते हैं, तो शिव जी कहते हैं कि आपके गुरु ने, जो सदगुरु हैं, आपके गुरु ने आपको तदीय मंत्र प्रदान किया। गुरु अपने मन से मंत्र नहीं बना सकता, या गुरु ऐसा नहीं कर सकता कि तुम्हारी जो इच्छा है उस मंत्र का जाप करो, ऐसा गुरु नहीं कर सकता। आजकल कुछ लोग कहते हैं ऐसा, तो गुरु मंत्र दान करता है गुरु के कर्ण में, शिष्य के कर्ण में। तो जो मंत्र दान करता है वो मंत्र भगवान का मंत्र होना चाहिए, तदीय मंत्र, भगवान को प्राप्त करने के लिए वो मंत्र होना चाहिए। तो गोप कुमार ने दशाक्षर गोपाल मंत्र को प्राप्त किया, हम लोग भी गोपाल मंत्र को प्राप्त किए हैं, क्योंकि हम लोगों का मंत्र अष्ट दशाक्षर है। जो लोग गायत्री दीक्षा ले चुके हैं उनको पता है, तो गायत्री दीक्षा में ये गोपाल मंत्र भी दिया जाता है हमारी परंपरा में, किंतु हमारा मंत्र जो है अष्ट दशाक्षर मंत्र, गोपाल मंत्र। तो जो भी हो, ये परंपरा से ये मंत्र आ रहा है। तो शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो भगवान का मंत्र दिया है वो मंत्र पर अनुरक्त, और तुम्हारी योग्यता क्या है गुरु से वो मंत्र ग्रहण करके, तुम आप केवल मंत्र जप करने के लिए नहीं करते। जैसे हम लोग गायत्री दीक्षा लेते हैं और त्रिकाल संध्या में गायत्री का जप करना पड़ता है, मंत्र का जप करना पड़ता है, तो उस मंत्र का जप इस तरह नहीं होना चाहिए कि ठीक है गायत्री जप करना है, टाइम हो गया, चलो जल्दी जल्दी गायत्री मंत्र जप करके चले दूसरे काम के लिए, और कभी याद नहीं आया गायत्री मंत्र जप करने के लिए, भूल गए। इसका अर्थ है कि वस्तुतः हम उतना निष्ठावान नहीं है। तो गोप कुमार जो गोपाल मंत्र का जप कर रहे थे वो निष्ठापूर्वक मंत्र का जप कर रहे थे, क्योंकि उस मंत्र के प्रति वो अनुरक्त थे। उनको उनकी आसक्ति थी इस मंत्र के ऊपर, निष्ठा पूर्वक उन्होंने ग्रहण किया था इस मंत्र को गुरु से, उनको दृढ़ विश्वास था इस मंत्र के ऊपर, और उन्होंने अपने अनुभव में देखा कि इस मंत्र के द्वारा वो कहां गोवर्धन और कहां अब मुक्ति धाम में पहुंचे इस मंत्र का जप करके। तो गोप कुमार जो मंत्र का जप करते थे तो अनुरक्त होकर आसक्त होकर प्रेम भाव से उस मंत्र का जप करते थे। ये कोई यांत्रिक मंत्र जप नहीं था, मैकेनिकल, चलो सोलह माला करना है सोलह माला कर दिया रख दिया चलो, या मंत्र जप करना है तीन बार कर दिया, ये केवल हम ड्यूटी कर रहे हैं, किंतु उसमें अपने भाव को लगाना, मंत्र के भाव को समझना, मंत्र का अर्थ क्या है उसको समझना चाहिए, और मंत्र के अर्थ को समझ करके हमें प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम प्रेम पूर्वक उसके अर्थ को समझकर जप करेंगे तो हमारे ध्यान में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो वो वस्तुतः ध्यान निष्ठ व्यक्ति हो, ध्यान में जिसकी निष्ठा। कभी कभी लोग तो पैदल चलते चलते गायत्री मंत्र का भी जप कर देते हैं, और कोई बैठे बैठे जप करता भी है तो इधर उधर देखता रहता है, इधर जनेऊ लेके मंत्र जप कर रहा है और देख रहा है सब। ये मंत्र जप का तरीका नहीं है। मंत्र जप में मन को केंद्रित करना चाहिए, ध्यान को केंद्रित करना चाहिए, इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र के ऊपर ध्यान होना चाहिए, मंत्र के अर्थ पर ध्यान होना चाहिए, तब तो भाव का उदय होगा। और हम इधर उधर देखेंगे, चलते चलते गायत्री जप करेंगे तो उसमें कहां ध्यान और कहां भाव। तो इसलिए ध्यान पूर्वक मंत्र जप से फल हम प्राप्त होंगे, क्योंकि गोपाल मंत्र जो हमें प्राप्त है ये बहुत शक्तिशाली है, और इस मंत्र पर हमें विश्वास रहना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए, क्योंकि गोप कुमार को यह दृढ़ विश्वास था अपने मंत्र पर जो गुरु से प्राप्त हुए थे, इसलिए वो भूमंडल को त्याग करके ब्रह्मलोक और उच्चतर लोक सभी को प्राप्त हो गए मंत्र के बल से, उनको कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये मंत्र का प्रभाव है, इसलिए शिव जी कहते हैं कि आप इस मंत्र पर अनुरक्त हैं, मंत्र के प्रति आसक्ति है, दृढ़ विश्वास है मंत्र पर, और आपने सदगुरु से ये मंत्र प्राप्त किया है जो एकांत कृष्ण भक्त है, इसलिए आप उस वैकुंठ को जाने के लिए योग्य व्यक्ति है। भगवत भजनानंद रसिक अपेक्षक जने उपेक्षित इदं विद्धि पदं विघ्न सम त्यज। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान के भजन में आनंद को प्राप्त करना चाहता है, भगवत भजनानंद रसिक, जो भगवान के भजन में आनंद के रसिक है, आनंद रस को आस्वादन करने वाला, भगवान के भजन में आनंद, जैसे हम भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जब हम नाम संकीर्तन करते हैं उसमें हम आनंद को प्राप्त होते हैं। तो ये भजन का आनंद है, इसलिए आनंद जब प्राप्त होते हैं हम नृत्य करने लगते हैं। कभी कभी जो भक्त नहीं है वो समझ नहीं पाते हैं कि ये भक्तों में इतनी शक्ति कहां से आती है, ये इतना उछलते कूदते हैं कीर्तन करते समय। कभी कभी जो भक्त नहीं है अभक्त है वो सोचते रहते हैं ठीक है भगवान का नाम लेना है तो लीजिए, इतना उछलना कूदना ये सब क्या है। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा इस प्रकार कि भगवान का नाम लेना है तो लीजिए, इतना उछलना कूदना क्यों है। तो हमने कहा कि आप समझ नहीं सकते क्यों भक्त लोग उछलते कूदते हैं, क्योंकि उनको आनंद की प्राप्ति होती है उसमें। भगवान के नाम संकीर्तन में आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने आप पैर उठने लगता है, उछलते कूदते हैं लोग। कभी कभी हमारे मंदिर में हम देखते हैं बाहर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, और जब भक्त लोग उस समय कीर्तन करते होंगे और नृत्य करते होंगे तो ये लोग भी भक्तों के साथ मिलकर नृत्य करने लगते, क्योंकि उनको भी आनंद आता है इसमें। तो ये आनंद का आनंद की अभिव्यक्ति है, बाह्य अभिव्यक्ति उछलना कूदना और अश्रु विसर्जन करना। कभी कभी देखा जाता है भक्त लोग रोते रहते हैं भगवान के सामने नृत्य कीर्तन करते हैं, क्योंकि वो आनंद को प्राप्त होते हैं। तो भगवत भजन आनंद रसिक अपेक्षक ही जन। तो जो लोग भगवान के भजन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों के लिए उपेक्षित इदं विद्धि पदं विघ्न समाप्त। तो उन लोगों के लिए ये जो ब्रह्म पद है, मुक्ति पद है, ये उनके लिए विघ्न के समान। विघ्न अर्थात बाधा। जो भगवान के भजन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं ये मुक्ति उनके भजनानंद में बहुत बड़ी बाधा। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुक्ति का नाम भी बदल दिया था, मुक्ति पद के स्थान पर भक्ति पद कर दिया था। वो मुक्ति का नाम तक सुनना नहीं चाहते थे, पहले तो मुक्ति मुक्ति बोलते थे क्योंकि निराकारवाद में विश्वास करते थे और मुक्ति को बहुत महत्व देते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने के उपरांत सार्वभौम भट्टाचार्य मुक्ति का नाम तक लेना तो दूर, सुनना भी नहीं चाहते थे। इसलिए जो शास्त्र का शास्त्र में जो श्लोक है मुक्ति पदे सदाय भाग, तो मुक्ति पद का नाम सुनकर उनको अच्छा नहीं लगा तो भक्ति पदे सदाय भाग उन्होंने कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपने क्यों बदल दिया शास्त्रों की बात को, क्यों बदल दिया शास्त्र के शब्द ना, हमें और अच्छा नहीं लगता है मुक्ति का नाम सुनना, ये भक्ति में बाधा है। तो इसलिए शिव जी कहते हैं जो भगवान के भजन में आनंद को प्राप्त करना चाहता है वो इस मुक्ति पद की उपेक्षा करे, विघ्न मानकर, या भगवान भजनानंद में बाधा मानकर इस मुक्ति की उपेक्षा करे। इसलिए शिव जी कहते हैं कि आप अभी जो महाकालपुर में आए हुए हो और यहां भगवान का दर्शन हुआ आपका, जबकि सभी को ये दर्शन प्राप्त नहीं होता, महाकालपुर में महाकाल विष्णु का दर्शन केवल गोकुमार को हुआ था, जो मुक्ति कामी है उनको भगवान का रूप का दर्शन नहीं होता, यद्यपि भगवान वहां उपस्थित है, क्योंकि वो भगवान के रूप को मानते ही नहीं, तो भगवान क्यों दर्शन देंगे उनको। तो इसलिए शिव जी कहते हैं कि ये गोप कुमार आप वैकुंठ जाने के लिए योग्य हैं, इसलिए आप इस महाकालपुर को त्याग करके चले जाइए, यहां मत रहिए। ये आपके भजनानंद में बाधा। अत्रापि भगवंतं यद् दृष्टवानसि तादृशम् सद्गुरु कृपया कृष्ण दिदृक्षाभरकारितम्। तो शिव जी कहते हैं कि हे गोप कुमार, आप यहां पर जिस प्रकार भगवान का दर्शन किया है, महाकाल विष्णु का दर्शन किया है, तो उसी प्रकार आप वैकुंठ में अपने सद्गुरु और वैष्णव की कृपा से जब आपकी तीव्र इच्छा उत्पन्न हो जाएगी भगवान का दर्शन करने के लिए, तो वैकुंठ में आपका आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आपका भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि सद्गुरु की कृपा आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति में तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो पहली आवश्यकता है सद्गुरु की कृपा। और यदि व्यक्ति के मन में तीव्र इच्छा है भगवान का दर्शन करने के लिए और सद्गुरु की कृपा उसको प्राप्त है, तो अवश्य उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, भगवान का दर्शन हो जाएगा। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिस सद्गुरु की कृपा से भगवान की कृपा होती है, और गुरु यदि अप्रसन्न है किसके ऊपर, उसकी कोई गति नहीं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए, भगवान को प्राप्त होने के लिए, गुरु के निर्देशन में सेवा करनी चाहिए, मंत्र का जाप करना चाहिए, नाम संकीर्तन का आनंद प्राप्त करना चाहिए, और गुरु की कृपा अनिवार्य है इसके लिए। इसमें आनंद प्राप्त करने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए ये गुरु की कृपा अनिवार्य है, अन्यथा कोई भी भक्ति मार्ग में सफल नहीं हो सकता। इसलिए भगवान स्वयं, यद्यपि वो जगत गुरु हैं, स्वयं गुरु ग्रहण करते हैं और सारे जगत को शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को सद्गुरु, जो कृष्ण का भक्त हो, निष्काम भक्त, उनकी सेवा करके, उनसे पूछ करके व्यक्ति दिग्दर्शन को प्राप्त हो, जिससे कि भगवान को वो प्राप्त हो सके। तो शिव जी कहते हैं कि आप वो कृपा को प्राप्त हैं, सद्गुरु की कृपा को प्राप्त हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए आप में वो तीव्र इच्छा। तो ये तीव्र इच्छा होना भी बहुत आवश्यक है। तीव्र इच्छा होना चाहिए और सद्गुरु की कृपा भी होनी चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? यदि हमारी तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो सद्गुरु की कृपा सहायक होती है भगवान को प्राप्त कराने में। तो शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने गोप कुमार को आश्वस्त किया वैकुंठ जाने के लिए, क्योंकि वो योग्य व्यक्ति थे। तो उस समय यह कहकर शिव जी चुप हो गए। अब जो बैकुंठवासी जन भगवान के पार्षदगण वहां आए हुए थे और उनमें चतुकुमार भी थे, और ये किस लिए आए हुए थे मुक्तिधाम में किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक बताया नहीं है वो किस लिए आए। तो उन लोगों ने शिवजी को पहले, जब शिवजी ने गोप कुमार को समझाया और वो अब चुप रहे, कुछ बोला नहीं, तब ये बैकुंठ के जो अधिवासीगण आए हुए थे उन लोगों ने शिवजी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके ये लोग शिवजी की प्रशंसा करते हैं जो बैकुंठ से आए हुए भगवत पार्षदगण। तो कहते हैं, क्योंकि वो सुन रहे थे, ये बैकुंठवासीगण सुन रहे थे शिवजी क्या समझा रहे थे गोप कुमार को, कैसे बैकुंठ धाम को प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति कैसे करना है समझा रहे थे। तो ये लोग बैकुंठवासीजन ये बहुत प्रसन्न थे शिवजी के ऊपर, क्योंकि बैकुंठ के पार्षदगण भी भ्रमण करके सारे संसार में ये भक्ति का ही प्रचार करते हैं, और वो देखते हैं कि शिवजी भी वही काम कर रहे हैं, तो ये बहुत प्रसन्न थे। तो उन्होंने शिवजी से कहा, तेना बैकुंठ नाथे न समं कोपि न विद्यते। तो ये बैकुंठवासी जन शिवजी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप बैकुंठनाथ के समान, बैकुंठ के अधिपति जो नारायण विष्णु हैं, आप उनके समान हैं, आपके समान और कोई संसार में नहीं है, आप ही एकमात्र बैकुंठनाथ के समान। भगवत भवतो भेदो गौर्यास्त रमयास, आप बैकुंठनाथ के अवतार हैं। शिवजी तो ऐसे भी गुणावतार है, तो कहते हैं आप बैकुंठनाथ के अवतार हैं। तो भगवत भवतो अभेद, तो भगवान से आप भिन्न नहीं है, जिस प्रकार गौर्यास्त रमयास, जिस प्रकार बैकुंठ में लक्ष्मी देवी हैं और आपकी पत्नी गौरी पार्वती ये भी लक्ष्मी से भिन्न नहीं है। तो ये इसलिए बताया गया है कि लक्ष्मी जी का विस्तार रूप पार्वती है, जो दुर्गा देवी माया शक्ति, और लक्ष्मी देवी भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो उसी प्रकार भगवान के विस्तार रूप शिवजी हैं, लक्ष्मी के विस्तार रूप गौरी पार्वती। तो ये भगवत पार्षदगण कह रहे हैं, तल्लोके भवतो वासो दिव्याश्च किल युज्यते ख्यात प्रियतम स्तस्य बतारस्य भवान महा। तो कह रहे हैं कि तो उस धाम बैकुंठ धाम जो है, ये बैकुंठ धाम में वास करने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते, और आप ख्यात प्रियतम स्तस्य अवतारस्य, और आप भगवान के प्रियतम के रूप में, प्रियतम अवतार के रूप में सारे जगत में विख्यात प्रसिद्ध है कि आप भगवान विष्णु के प्रियतम है, प्रियतम अवतार है। और आप दोनों तल्लो के वास भगवान विष्णु के लोक में आप और पार्वती दोनों वस्तुतः वास करने के लिए योग्य है, क्योंकि आप भगवान के अवतार के रूप में सारे जगत में प्रसिद्ध। तथापि यद इदं किंचित भासितं भवता अधुना, यद्यपि आप वैकुंठ में वास करने के लिए योग्य हैं, फिर भी आप यहां पर किंचित भासितं भवता अधुना, आप यहां पर अब गोप कुमार के समक्ष जो कुछ बोल रहे थे, शिव जी बोल रहे थे किसके बारे में, भगवान के लोक के बारे में, वैकुंठ लोक के बारे में, और कैसे उस लोक को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वैकुंठवासी जन शिव जी से कहते हैं कि आप अभी अभी जो बोल रहे थे गोप कुमार से, स्वभाव भगवत पृष्ठ तमत औपयिक हयम, तो ये आपके लिए स्वभाव सिद्ध है कि आप भगवत पृष्ठ हैं, प्रिय हैं, भगवान विष्णु के प्रिय हैं, इसलिए आप अभी अभी गोप कुमार से जो बोल रहे थे यह आपके अनुकूल बात आप बोल रहे थे, क्योंकि आप भगवान के प्रिय हैं, इसलिए भगवान के प्रिय हित की बात ही आप बोलेंगे। तो गोप कुमार को हित की बात ही कह रहे हैं, कैसे वैकुंठ को जा सकते हैं और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अतः सर्वावतारेभ्यो तद्भक्ति रसकल्लोल ग्राहको वैष्णवेडित, अतः सर्वावतारेभ्यो भवतो महिमाधिकः। तो आप सदा सर्वदा भगवान विष्णु के भक्ति रस कि लहरों में आप डूबते रहते हैं, अर्थात निमग्न चित्त रहते हैं। ये वैकुंठवासी जन शिव जी से कह रहे हैं, तद भक्ति रस कल्लोल ग्राहक वैष्णवेरी। तो ये वैष्णव के द्वारा ये बताया गया है, वैष्णव लोग यही कहते हैं कि शिव जी सदा सर्वदा भगवान के भक्ति रस में निमग्न चित्त रहते, इसलिए उनको वैष्णव अग्रगण्य कहा गया, परम वैष्णव कहा गया, वैष्णवानंग यथा शंभु कहा गया। अतः सर्व अवतारेभ्यो भवतो महिमाधिक, इसलिए भगवान के जितने भी भक्त अवतार हैं, शिवजी भी एक भक्त अवतार भगवान, तो इन सारे भक्त अवतारों में जैसे कुमारगण है, ये भी भक्त अवतार है। तो वैकुंठवासी जन शिवजी से कहते हैं कि भगवान के जितने भक्त अवतार हैं उनमें से आपकी महिमा सबसे अधिक है, अर्थात शिवजी के समान परम वैष्णव कोई नहीं। ये भगवान के भक्ति रस में शिव जी सदा सर्वदा निमग्न रहते हैं, और अकेले नहीं, अपनी पत्नी पार्वती और अपने पार्षद वर्गों को साथ लेकर अपने लोक में सदा सर्वदा शिव जी भगवान के नाम संकीर्तन में रत रहते हैं और नृत्य आदि करते रहते हैं, प्रेमोन्मत होकर नृत्य आदि करते रहते हैं और नाम संकीर्तन करते रहते हैं। इसलिए शिवलोक में सदा सर्वदा नाम संकीर्तन भगवान का चलता रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यह करके शिव जी क्या शिक्षा देते हैं? अपने अनुचर वर्गों को ये शिक्षा देते हैं, जो लोग शिव जी की भक्ति करके शिवलोक को प्राप्त हुए हैं उनको यही शिक्षा देते हैं कैसे भगवान की भक्ति की जाए। तो अपने अनुचर को भी भगवत भक्ति में प्रेरित करते हैं शिव जी। तो इस प्रकार कहकर अब शिव जी की प्रशंसा जब वैकुंठवासी जन ने किया तो शिव जी क्या करते? यदि किसी व्यक्ति के सामने उसकी प्रशंसा की जाती है और वो यदि महान व्यक्ति हो, कोई साधारण व्यक्ति हो और उसकी प्रशंसा हम करेंगे तो वो बहुत खुश हो जाए, बहुत प्रसन्न हो जाए और सोचेगा ये हमारा बंधु है, ये मेरी प्रशंसा कर रहा है। चाहे वो ऊपर से मुख से प्रशंसा करता हो और पीछे से और कुछ करता हो, किंतु बहुत प्रसन्न हो जाएगा कि ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, ये मेरा बंधु है। और वो क्या करेगा? उसको थैंक यू बोलेगा ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, बहुत धन्यवाद प्रशंसा करने के कारण। तो शिवजी ने क्या किया? अब उनके सामने ये वैकुंठवासी जन प्रशंसा कर रहे हैं, क्या शिवजी ने थैंक यू कहा? नहीं। शिवजी बहुत लज्जित हो गए, क्योंकि जो महान भक्त होते हैं वो अपने सामने दूसरों की प्रशंसा या दूसरों की प्रशंसा अपने लिए सुनकर वो लज्जित हो जाते हैं, वो आनंदित नहीं होते हैं, लज्जित होते हैं। और मुख नीचे कर देते हैं, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। ये वैष्णवों का लक्षण, क्योंकि जो वैष्णव होते हैं परम वैष्णव ये नम्र स्वभाव के होते हैं, उनके मन में कोई अहंकार नहीं होता। और यही वैष्णव का लक्षण कि यदि मन में अहंकार है वो व्यक्ति वैष्णव नहीं बन सकता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, चाणक्य पंडित ने भी कहा, नमन्ति फलिना वृक्षा नमन्ति गुणिना जना। तो जिस प्रकार वृक्ष में फल लग जाते हैं और अधिक फल लग जाने पर क्या होता है? वृक्ष की डालियां नीचे झुक जाती फल के भार से। उसी प्रकार यदि कोई गुणी व्यक्ति है जिसमें बहुत सारे गुण है तो उसका स्वभाव क्या होता है? वो नम्र होकर झुक जाता है, सदा सर्वदा झुका हुआ रहता है। ये अहंकार प्रदर्शन नहीं करता है कि मैं इतना सारा जानता हूं, इतने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हमने, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये अहंकार उसमें नहीं आता। जो गुणी व्यक्ति वस्तुतः ज्ञानी उसमें अहंकार कभी स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। जो वस्तुतः ज्ञानी है वो नम्र रहता है, झुक जाता है। जो वस्तुतः ज्ञानी नहीं है वो अहंकार प्रदर्शन करता कि मैं इतना जानता हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे समान कोई नहीं है। तो शिवजी परम वैष्णव हैं, इसलिए अपनी प्रशंसा अपने सामने वैकुंठ के आदिवासियों के मुख से सुनकर वो लज्जित हो गए, मुख को नीचे करके चुप रहे, कुछ बोले नहीं। और ये शिवजी का स्वभाव वैष्णवोचित ही था। नम्र स्वभाव। अब जब वैकुंठवासियों ने देखा कि शिव जी लज्जित हो गए, उनके सामने ये लोग प्रशंसा कर रहे थे उनकी, तो फिर वैष्णव वैकुंठवासी जन वो भी और कुछ शिव जी को बोले नहीं, तो फिर अपना ध्यान उन्होंने गोप कुमार की तरफ मोड़ा, जो गोप कुमार वहां खड़े होकर ये वैकुंठवासी जन और उनके मुख से शिव जी की प्रशंसा सुन रहे थे। तो इन लोगों ने गोप कुमार का आलिंगन किया, भगवान का परम भक्त समझकर, क्योंकि वैकुंठवासी जन स्वयं भगवान के भक्त हैं और एक दूसरे भक्त को देखते हैं तो भक्त भक्त से जब मिलता है, कैसे मिलता है, परस्पर को आलिंगन करता है, प्रेम भाव प्रदर्शित करता है। एक भक्त दूसरे भक्त से इस प्रकार मिलता है, क्योंकि दोनों भक्त हैं, उनके प्रभु इष्ट एक है, इसलिए दोनों में प्रेम भाव। प्रेम भाव इसलिए नहीं है कि इस भक्त ने मुझे कुछ दिया है या मेरा कुछ उपकार किया है, इसलिए प्रेम भाव। प्रेम भाव इसलिए है कि हम दोनों अपने प्रभु इष्ट कृष्ण की उपासना करते हैं, वो मुख्य कारण। अपने स्वार्थ के कारण हम मिलते नहीं, हमारा जो परम स्वार्थ है, परार्थ, वो है कृष्ण। तो दोनों कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए आपस में प्रेम भाव। जहां स्वार्थ आ जाता है वहां प्रेम भाव नहीं रहता, जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है वहां बंधुत्व शत्रुता में परिणत हो जाता है। तो वैकुंठवासियों ने आलिंगन किया गोप कुमार को, अब गोप कुमार को बोलने जा रहे हैं वैकुंठवासी जन, तो इसके संबंध में हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो आज का कार्यक्रम समाप्त होने से पहले